नमस्कार, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय श्रोताओ, इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से दूसरी पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है निर्गमन। हम आशा करते हैं कि इस पुस्तक से आपको आत्मिक लाभ मिलेगा। तो आइए, अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले आइए सुने ये मधुर गीत।
लौट के आजा चरणों में उसके, मौका ये खोना ना। लौट के आजा चरणों में उसके, मौका ये खोना ना।
जन्म नया एक ले ले, तेरी ही खातिर तो जीवन भरी ये बदली बरसी है आ,
बरसी है
आ, तेरी ही खातिर तो जीवन भरी ये बदली बरसी है आ। नहाए रहम और माफी की मेघा बरसी है आज, मेघा बरसी है आज। रिमझिम रिमझिम प्यार की बरखा रूस से बरसी है आज, रिमझिम प्यार की बरखा रूस से बरसी है आ।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सबको मेरा नमस्कार मिले। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब प्रभु की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज भी प्रभु के वचन को सुनने और उसमें से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, यह समय हमें प्रभु ने दिया है कि थोड़ा समय हम उसे दें ताकि वह हमसे बातचीत करे और हमें आशीष दे। आज वह हमसे निर्गमन की पुस्तक से बातचीत करना चाहते हैं, जिसमें वह हमें अब तक इसराइलियों के मिस्र से छुड़ाए जाने, जंगल में उसके लिए तंबू बनाने और उपासना करने के बारे में बताया है। आज हम अध्याय 39 में सेवा के लिए वस्त्र और पवित्र वस्त्र, एपोद, कवच, अंगरखा और किरीट आदि के विषय में देखेंगे और ये सारी वस्तुएं मूसा के द्वारा दिखाई और स्वीकृत की गई थी। आइए देखें महायाजक के पवित्र वस्त्र या पोशाक। मित्रों, हारून महायाजक था और उसके वस्त्र जो उसने पहने थे यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। इन वस्त्रों को बनाने के तरीके हमें पहले ही दिए जा चुके हैं। आइए हम निर्गमन की पुस्तक 39 अध्याय उसके 1 और 2 पद को पढ़ें, जहां पर लिखा है, फिर उन्होंने नीले, वैजनी और लाल रंग के काढ़े हुए कपड़े पवित्र स्थान की सेवकाई के लिए और हारून के लिए भी पवित्र वस्त्र बनाए, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने एपोद को सोने और नीले, वैजनी और लाल रंग के कपड़े का और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े का बनाया। मित्रों, ये वस्त्र पवित्र कहलाते थे क्योंकि ये परमेश्वर की सेवा के लिए अलग किए गए थे। हम निर्गमन 39 उसके 5 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, और उसके कसने के लिए जो काढ़ा हुआ पटुका उस पर बना वह उसके साथ बिना जोड़ का और उसी की बनावट के अनुसार अर्थात सोने और नीले, बैजनी और लाल रंग के कपड़े का और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े का बना, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। मित्रों, यह विचित्र था क्योंकि यह एक असाधारण तरीके से बुना हुआ था। महायाजक के द्वारा 8 प्रकार के वस्त्र पहने जाते थे। 4 कपड़े अन्य याजकों के वस्त्र के समान या मिलते जुलते थे जो अन्य याजकों के द्वारा पहने जाते थे, परंतु 4 बिल्कुल निजी और उसी के लिए थे और उसे अन्य याजक नहीं पहन सकते थे और वह उसे अन्य याजकों से अलग करता था। वे वस्त्र परमेश्वर की महिमा और उसकी सुंदरता के लिए थे। यह तस्वीर हमारे महान महायाजक प्रभु यीशु मसीह का है, जिसमें उसके सभी असाधारण अनुग्रह और महिमा है। वस्त्र की प्रत्येक सामग्री प्रतीकात्मक थी। मित्रों, महान प्रायश्चित के दिन जब हारून महापवित्र स्थान में लोहू को ले गया तो उसने अपने वस्त्र की सारी महिमा और सुंदरता को एक तरफ रख दिया और उसने एक साधारण सन के वस्त्र को पहना, जिसे दूसरे याजक भी पहनते थे। उसे अनलंकृत परंतु पवित्र होना चाहिए था। सफेद सनी का वस्त्र जिसे याजक पहनता था वह धार्मिकता को दर्शाता है। यशायाह नबी की पुस्तक 52 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, दूर हो, दूर, वहां से निकल जाओ, कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, उसके बीच से निकल जाओ, हे यहोवा के पात्रों के ढोने वालों, अपने को शुद्ध करो। मित्रों, आज भी परमेश्वर इस बात को कहता है, मैं यह विश्वास नहीं करता कि परमेश्वर किसी पापी प्रचारक या शिक्षक या सामान्य जन को उपयोग करते हैं, चाहे वह कितना भी प्रचलित या प्रभावशाली व्यक्ति क्यों ना हो, वह उसका उपयोग नहीं करते हैं। वे परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वह उनके कामों को स्वीकार ही नहीं करेंगे। वे सिर्फ लकड़ी, पुआल और खूंटी बना रहे हैं। मित्रों, हमें मसीह की धार्मिकता के वस्त्र धारण करने चाहिए और तब उसके अनुसार अपने जीवन को जीना है। इन दिनचर्या के वस्त्रों में हमें यही एक सीख दी गई है। एक रुचिदायक बात यह भी है, जब हारून महापवित्र स्थान में लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाने गया तो उसने अपने महिमा और सुंदरता के वस्त्र को उतार कर रख दिया। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए तो उसने अपने ईश्वरत्व को नहीं छोड़ा, परंतु उसने अपने महिमा और सुंदरता के वस्त्र को अलग किया। उसने अपने परमाधिकार को परमेश्वर के जैसे अलग किया। उसने सेकिना महिमा को अलग किया और इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आया। वह बालक की तरह जन्मा, पर उस समय मनुष्य एक बालक का नहीं परंतु एक राजा का इंतजार कर रहे थे। तब उसने पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। वह अपने मनुष्यत्व में ही मरा। मित्रों, परमेश्वर क्रूस पर मर गया, यह कहना पूर्णतया सत्य नहीं होगा। मुझे आश्चर्य होता है कि लोग मृत्यु का मतलब क्या समझते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरे तो वह परमेश्वर से अलग किया गया, जो सच है। यह निश्चित है कि त्रिएकत्व में एक दरार था जब मसीह हमारे लिए पाप ठहराया गया, जबकि वह पाप को नहीं जानता था। हम दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसके 21 में इसे पढ़ते हैं, परंतु उस क्षण में परमेश्वर मसीह में संसार को उससे मेल कराना चाहते थे। दूसरा कुरिन्थियों 5:19 में। मित्रों, यह एक रहस्य है जिसे मैं आपको नहीं बता सकता हूं। मैंने बहुत से धर्म विज्ञानियों के कामों को पढ़ा है, परंतु उन्होंने भी इसे व्यक्त नहीं किया है। मित्रों, इन वस्त्रों की सुंदरता और महिमा बहुत प्यारी थी। महायाजक बहुत अधिक सजा और रंग बिरंगा होता था। वह एपोद पहनता था जिसमें 2 पत्थर लगे थे। एक कंधे के तरफ एक पत्थर था जिसमें 6 गोत्रों के नाम लिखे थे और दूसरे कंधे में दूसरा पत्थर था, उसमें भी 6 गोत्रों के नाम लिखे थे। यह हमारे प्रभु की योग्यता और सामर्थ को दर्शाती है कि वह भेड़ों का महान चरवाहा है। जब एक भेड़ खो जाती है तो हमारा महान मुक्तिदाता उसे ढूंढ निकालता और उसे अपने कंधे पर बैठा कर वापस लाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा एक चरवाहा है जो हमें अपने कंधे में बैठा कर सुरक्षित अपने झुंड में वापस ले आता है। इब्रानियों के पत्री 7 अध्याय उसके 25 पद में लिखा है कि वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं। मित्रों, हम आगे देखते हैं कि महायाजक एक कवच भी पहनता था जो एक पोशाक की तरह ही था। इसमें 12 पत्थर थे और यह एक महान सुंदरता की बात थी। संभवतः इसमें थैले थे जिसमें उरीम और थुमीम लगे थे। उरीम और थुमीम का संबंध भविष्यवाणी के साथ था। हमें यह नहीं बताया गया है कि यह कैसे काम किया। कवच के सुंदर पत्थर यह दर्शाते हैं कि यीशु मसीह आज हमें अपने हृदय के निकट रखते हैं। वह हमसे प्रेम करते हैं, जिसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 16 में पढ़ते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे मित्रों, ये पत्थर हमारे प्रति उसके महान प्रेम का चित्रण करते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि एपोद के वस्त्र में सोने की घंटियां और अनार लगी थी, ताकि जब महायाजक पवित्र स्थान में अपने याजकीय कार्य के लिए जाए तो घंटी बजने की आवाज सुनी जा सके। अनार एक विश्वासी के फलवंत जीवन को दर्शाते हैं और घंटियां उसके जीवन की गवाहियों को दर्शाते हैं। जब महायाजक पवित्र स्थान में होता था तब इसराइली कहते थे कि वह वहां अंदर आराधना के स्थान में हमारे लिए सेवा कर रहा है। हम जानते हैं कि वह वहां पर है क्योंकि हम उसकी घंटियों की आवाज सुन सकते हैं। मित्रों, हमारे लिए भी आराधना का यही मतलब होना चाहिए। हमारा महायाजक हमारे परमेश्वर के सामने हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ताकि यह हमें मसीह के निकट ला सके। मित्रों, जब मैं प्रभु की संगति में बढ़ ही रहा था, तब मेरी कलीसिया में एक प्रभु के दास थे जिनके द्वारा से मुझे काफी उत्साह मिलता था। वह बहुत ही अच्छे परमेश्वर के दास थे। कभी कभी वह मुझसे कहते, तुमने आज घंटी बजाई? मैं इसके अर्थ को नहीं समझ पाता था और शायद आप समझ गए होंगे। मित्रों, उन दिनों में मैं कई संदेश अच्छी रीति से नहीं दे पाता था, परंतु उसका मुख्य विषय था कि वह एक बाइबल प्रशिक्षण केंद्र का विद्यार्थी था, इसलिए वह मसीह के सामने परमेश्वर के वचन के प्रचार के द्वारा आने में सक्षम था। मित्रों, मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि एक रविवार जब आराधना खत्म हो गई तो एक साधारण सा व्यक्ति उसके पास आया और अपनी आंखों में आंसू लिए एक तरफ ले जाकर कहा, क्या आप जानते हैं कि मैं यीशु के बारे में इससे पहले नहीं जानता था कि वह कितना अद्भुत है। वह और बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पा रहा था। अंततः उसने उसके हाथ को छोड़ दिया जिसे वह थामे था और उस छोटी कलीसिया से निकलकर चला गया और वह उसे जाते हुए देखता रहा और उसके आंखों से आंसू टपक पड़े और उसने प्रार्थना किया, ओह प्रभु, काश मैं संदेश दे पाता ताकि लोग यह कहने पाते कि मैं नहीं जानता था कि यीशु इतना अद्भुत है। मित्रों, महायाजक के उन घंटियों को सुनने का अनुभव क्या ही अद्भुत था। याजक के वस्त्र का क्या ही सुंदर तस्वीर यहाँ पर है। उसके सिर पर का मुकुट कहता है, यहोवा के लिए पवित्र। यह पवित्रता के बारे में बताता है और यह आंतरिक जीवन से संबंधित है, परंतु महत्वपूर्ण बात है कि इसका मतलब महायाजक को संपूर्ण सेवकाई करने के लिए दिया जाना है। पवित्र का मतलब है कि कोई भी वस्तु परमेश्वर के लिए या उसके उपयोग के लिए अलग किया हुआ, अर्थात जो सिर्फ परमेश्वर के लिए ही उपयोग होता हो। मित्रों, कुछ बातें हैं जिसे मैं आजकल के संदेशवाहकों को या प्रचारकों से कहना चाहता हूं। मुझे प्रभु की सेवकाई करते कई वर्ष हो चुके हैं और मैं जानता हूं कि बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि सूर्य के नीचे प्रकाश में सभी काम प्रचारक ही करें। वे चाहते हैं कि वह सामाजिक पृष्ठपट बने, हाथों को थामे, देखभाल करने वाला बने और साथ में संदेश भी दें, अर्थात प्रचार भी करें। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि बहुत से प्रचारक घबरा कर टूट गए हैं। मित्रों, बहुत से प्रचारक उस दूध पिलाने वाली धाई से बढ़कर नहीं है जो बहुत से मसीह में दूध पीते छोटे बालकों के लिए हैं, जो चारों तरफ घूमकर हमेशा उनकी देखभाल करते हैं। जो प्रचारक आज वेदी पर खड़ा होता है उसे यहोवा के लिए पवित्र पोशाक पहनने के योग्य होना चाहिए। इसका मतलब है कि उसे संदेश तैयार करने के लिए समय मिलना चाहिए, उसके पास समय होना चाहिए ताकि वह परमेश्वर के लिए संदेश को तैयार कर सके। मुझे आश्चर्य होता है कि कई बार लोग अपनी कलीसिया में संदेश देने के लिए शनिवार रात को निमंत्रण देते हैं। वास्तव में वह पूरा दिन उसके लिए तैयारी और मनन चिंतन के लिए होना चाहिए। मित्रों, एक बार एक प्रभु के दास शनिवार के दिन एक सामान्य प्रभु के भक्त के घर में मिलने के लिए गए। तब उस सामान्य भक्त ने प्रभु के दास से कहा, आप मुझसे मिलने आए इसकी मुझे खुशी है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज के दिन मुझसे मिलने और समय बिताने के बजाय आप अपने संदेश की तैयारी कीजिए ताकि रविवार सुबह जब आप कलीसिया में संदेश दें तो हम लोग परमेश्वर के जीवित वचन को सुन सकें जो परमेश्वर की ओर से आता है। मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है और आशा करता हूं कि आप शनिवार के दिन पूर्ण रूप से वचन की तैयारी और मनन चिंतन में समय देंगे। मित्रों, मैं सोचता हूं कि उसके पास कहने का अधिकार था। मुझे और आपको इस सत्य को पहचानने और स्वीकार करने की आवश्यकता है कि एक प्रचारक को पोशाक पहनने चाहिए। बिना इसके हमारी सेवा प्रभु के लिए प्रभावपूर्ण नहीं होगी। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 39 समाप्त होता है और अब हम इस पुस्तक की अंतिम अध्याय 40 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे और इस अध्याय में हम इन विषयों को देखेंगे, तंबू का निर्माण और उसका अभिषेक, हारून और उसके पुत्रों का पवित्रीकरण, तंबू में यहोवा की महिमा से भरना आदि। यहाँ पर हम देखते हैं कि तंबू खड़ा किया गया और परमेश्वर की शकीना महिमा से भर गया, अर्थात तेज से भर गया। मित्रों, इस अध्याय में तंबू को खड़ा किया गया। मैं यहाँ पर सिर्फ एक विषय पर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हमने पहले ही प्रत्येक सज्जा सामग्री और पहराव के वस्त्र जो याजक के थे देख लिए हैं। जब मूसा इसराइलियों के बीच में तंबू खड़ा किया तो एक अद्भुत बात घटी, जिसे हम निर्गमन 40 उसके 34 से 38 पदों में पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया, और बादल जो मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज जो निवास स्थान में भर गया, इस कारण मूसा उसमें प्रवेश न कर सका। और इसराइलियों की सारी यात्रा में ऐसा होता था कि जब जब वह बादल निवास के ऊपर उठ जाता तब तब वे कूच करते थे, और यदि वह न उठता तो जिस दिन तक वह न उठता था उस दिन तक वे कूच नहीं करते थे। इसराइल के घराने की सारी यात्रा में दिन को तो यहोवा का बादल निवास पर और रात को उसी बादल में आग उन सबों को दिखाई दिया करती थी। मित्रों, जब प्रेरित पौलुस रोमी की पत्री में इसराइलियों को पहचानने की कोशिश करता है तो वह कई चीजों का नाम लेकर बताता है जो इसराइलियों को अन्य लोगों से अलग करती थी। उसमें से एक थी महिमा। हम इसे रोमियों के पत्री 9:4 में देख पाएंगे। सिर्फ इसराइली लोग ही थे जिनके पास परमेश्वर की महिमा थी, एक दृश्यमान परमेश्वर की उपस्थिति। यही वह महिमा थी जो उन्हें बड़े और भयानक निर्जन में से होकर ले चली। यदि उन्हें उस दिन वहां से प्रस्थान करना है तो बादल का खंभा सुबह उठ जाता था। यदि यह बादल नहीं उठा होता तो इसराइल के संतान वहीं पर स्थिर रहते थे। वे उस दिन वहां से जाने का प्रयत्न नहीं करते थे। वे अपनी बुद्धि और न्याय के द्वारा कभी भी नहीं बढ़े। मित्रों, उन्होंने कभी भी चिट नहीं डाला या पुर्जा नहीं डाला कि हम लोग यहां से चलें या नहीं, और मूसा ने भी कोई निर्णय नहीं लिया। यह निर्णय बादल का था। मित्रों, हम कई बार अपनी कलीसियाओं में कहते हैं कि मसीह कलीसिया का सिर है, लेकिन आपकी कलीसिया कैसी है? क्या वह आपकी कलीसिया का सिर है? क्या आज हम उस बादल का अनुसरण कर रहे हैं या हम किसी मनुष्य को कलीसिया की बोर्ड में रख रहे हैं, क्योंकि वह एक सफल व्यापारी है? आज आप सुनते होंगे कि लोग कहते हैं, मैं इस समस्या पर अपने प्रचारक से बात करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि वह मुझे बताए कि मुझे क्या करना चाहिए। मित्रों, हम जो पादरी हैं या प्रचारक हैं उतने निपुण नहीं हैं कि हम उन्हें अर्थात लोगों को बता सकें कि उन्हें क्या करना चाहिए। हम प्रत्येक लोगों के वैवाहिक समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं, परंतु आज भी एक बादल का खंभा है। यद्यपि आज बहुत से लोग नहीं देख पाते हैं, यह परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। वही एक होना चाहिए जो हमारी अगुवाई और मार्गदर्शन करे। ओह, कितने दुख की बात है कि हम उसका कैसे तिरस्कार करते हैं। मित्रों, हम लोग हमेशा किसी मनुष्य से निवेदन करते हैं या कुछ और जो परमेश्वर से अलग या हटकर है उससे सहायता मांगते हैं, परंतु हमें प्रचारक, शिक्षक और सेवकों की आवश्यकता है जो परमेश्वर की आत्मा के साथ भरे हुए हैं। हमारी कलीसियाओं को अगुओं की आवश्यकता है जो परमेश्वर के वचन पर विशेष ध्यान देते हैं और वे जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। आज कलीसिया के ऊपर में कोई दृश्यमान बादल नहीं है, परंतु परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई और मार्गदर्शन करना चाहता है। मित्रों, यही बात हमारे निर्गमन की पुस्तक के अध्ययन का समापन करती है। इसका आरंभ मिस्र में ईंट बनाने के काल में हुआ और इसका अंत तंबू में परमेश्वर की महिमापूर्ण उपस्थिति के द्वारा होता है। यह उसकी उपस्थिति थी जो उनकी अगुवाई निर्जन प्रदेश में से कर रही थी। मित्रों, परमेश्वर आपको भी पाप की गुलामी से आजाद करना चाहते हैं। वह आपको अपने महिमामय उपस्थिति में लाना चाहते हैं और अपनी इच्छा के केंद्र में रखना चाहते हैं, जहां वह आपकी अगुवाई और मार्गदर्शन कर सकते हैं। मित्रों, निर्गमन क्या ही अद्भुत पुस्तक है, जिसमें लोगों को गुलामी से लेकर आजादी तक और पाप से लेकर उद्धार तक का यात्रा कराती है, ताकि जो कोई उस परमेश्वर को जान ले जो महिमामय है और हमें हमारे पापों से छुटकारा देना चाहता है स्वीकार करे, तो वे भी अपने जीवन के पापों से मुक्ति पाएंगे और असीम शांति और आनंद प्रदान करेंगे। मित्रों, जरा रुक कर सोचिए क्या आपको अद्भुत नहीं लगता है कि कोई व्यक्ति आपके पापों के लिए आपके बदले में मरे और आपसे कहे कि बस मेरे पास आकर अपने पापों को मान लो, मुझसे क्षमा मांगो और तुम स्वतंत्र हो जाओगे। क्या आप इतना भी नहीं कर सकते हैं कि जाकर उसके पास माफी मांग लें और उद्धार का आनंद प्राप्त करें? आज आपसे सोना चांदी या धन चढ़ावा कुछ नहीं मांगा जा रहा है, सिर्फ आपको उस पर विश्वास करना और पापों की क्षमा मांगना है। मित्रों, परमेश्वर दयालु, प्रेमी, अनुग्रहकारी और न्यायी है। वह अपने चुने हुए लोगों इसराइलियों को भी गलत करने पर नाश कर सकता है, परंतु गलती मानने से क्षमा प्रदान करता है। वह आपको भी जीवन दान दे सकता है। आज इस पुस्तक के प्रकाशन में अपने जीवन को झांक कर देखें कि क्या आप पवित्र हैं। यदि नहीं तो कैसे हो सकते हैं, अवश्य विचार करें और परमेश्वर के पास आएं। यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि इस निर्गमन नामक पुस्तक के अध्ययन से आपको अवश्य ही लाभ मिला होगा और आपने जान लिया होगा कि परमेश्वर सामर्थी और सर्वोच्च है। वह असंभव को संभव कर देता है, जैसे लाल समुन्दर को दो भागों में विभाजित करना, चट्टान से पानी निकालना आदि। अब हम अगले अध्ययन में नई पुस्तक से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे, इसलिए आप अगले कार्यक्रम को सुनना ना भूलें और दूसरों को भी बताएं ताकि वे भी प्रभु के आशीषों को प्राप्त कर सकें। मित्रों, आज मुझे और आपको निर्णय लेना है कि क्या हम उस परमेश्वर के पास आने के लिए तैयार हैं। प्रश्न आपके और मेरे बीच में है। मुझे और आपको गंभीरता से सोचना है, क्योंकि यह निमंत्रण मुझे और आपको बार बार नहीं मिलेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।